कुछ बात सुना जी महाराज ने आज। एक और तो मानव जन्म की महत्ता की चर्चा की है, दूसरी ओर इंद्रिय संयम पर चर्चा की है। सत्संगति का क्या प्रयोजन है साधकों? स्वामी जी महाराज ने एक ही पृष्ठ में बड़े बड़े शब्दों में बताया है। सत्संगति हमें क्या दे देती है? मैं तो समझता हूं कितने अभागे हैं वे जो सत्संगति से पूर्ण लाभ न लेके तो अपनी कामनाएं पूर्ण करने के लिए, करवाने के लिए यहां पधारते हैं। महा अभागे हैं वे जो स्वामी जी महाराज ने आज एक पृष्ठ में लिखा है। यदि आपको पूरा पता ना लगा हो तो आज ये पृष्ठ घर जाके फिर पढ़ना, तो आपको पता लगे कि इस वक्त जहां हम बैठे हैं वह कितने जिंदगी के अनमोल क्षण हैं। संत की संगति संत बना देती है, जीवन दान देती है। आज स्वामी जी महाराज ने कहा, सोना तप कर जिस प्रकार कुंदन बन जाता है, ठीक इस प्रकार से सत्संगति बार बार आने से यदि निष्काम भाव से सत्संगति में आया जाता है, कुछ मांगे नहीं है, कुछ मिलने की चाह नहीं है, कुछ पाने की चाह नहीं है, निष्काम भाव से सत्संगति की जाती है तो वह जीवन निखर देती है, वह जीवन दिव्य जीवन हो जाता है। ये सत्संगति के लाभ है। एक घंटे की सत्संगति जो इस वक्त हमें प्राप्त होती है, शेष 23 घंटे इसी सत्संगति के लाभ के नशे में साधक चलो व्यतीत हो जाएं तो वह जीवन धन्य अति धन्य हो जाते हैं। अर्थ भी यही है। जिस प्रकार पहले वक्तों में घड़ी को चाबी दी जाती थी सुबह, और उसके बाद 24 घंटे उस घड़ी को कुछ नहीं करना पड़ता था, फिर अगले दिन चाबी देनी होती थी, ठीक इसी प्रकार से ये जो सुबह का सत्संग है इसी प्रकार का लाभ हमें देता है, दिव्य जीवन जीने की प्रेरणा देता है। धन्य है वह जो इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, और महाअभागे हैं वह एक घंटे की सत्संगति करके और 23 घंटे शेष अधर्माचरण करते हैं, उन जैसा अभागा कोई नहीं होगा। भाग्यवान है वह जो एक घंटे यहां से प्रेरणा लेके तो दिन भर प्रेरित रहते हैं कि हमें धर्म के अनुसार चलना है, हमें धर्माचरण करना है, तब सत्संगति का लाभ है। ये एक घंटे की सत्संगति आपको दिन भर झूठ बोलने का अधिकार नहीं देती, बेईमानी करने का अधिकार नहीं देती, हेराफेरी करने का अधिकार नहीं देती, ईर्ष्या अभिमानी जीवन व्यतीत करने का अधिकार नहीं देती, ईर्ष्यालु जीवन व्यतीत कटु शब्द, कड़वे शब्द, क्रोधी शब्द बोलने का अधिकार नहीं देती। यदि देते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी साधना निष्फल जा रही है, वह किसी काम की नहीं है, वह कभी आपको देवी सज्जनों शांति नहीं दे पाएगी, आनंद नहीं दे पाएगी जो सत्संगति सबको देती है। कल स्वामी जी महाराज ने ईर्ष्या एवं पैश्चिमता की चर्चा की थी, उसके अंतर्गत ईर्ष्या की चर्चा चल रही थी। कल आपके सामने जो दृष्टांत दिया जा रहा था, जो उदाहरण आपकी सेवा में प्रस्तुत की जा रही थी, उसी को आगे आज पूरा करते हैं। कल आप जी ने देखा ये ईर्ष्या ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों में बहुत बड़ी बाधा है। आदमी को यूं लगता है कि वह साधना में आगे बढ़ रहा है, लेकिन नहीं, वह पीछे खींच रहा है। ईर्ष्या रूपी जलन शीतलता का स्रोत भीतर विराजमान होते हुए भी आपको शीतलता प्रदान नहीं कर सकता। आपके अंदर ईर्ष्या की अग्नि, और जहां ईर्ष्या होगी साधकों वहां क्रोध की अग्नि भी उतनी ही जोर से जलेगी। दोनों अग्नियां जलती हैं, और दोनों अग्नियां जलती हैं तो शीतलता का स्रोत वहां है, शांति का स्रोत वहां है, आनंद का स्रोत वहां है, आपको कोई लाभ वह नहीं दे पाते हैं। अग्नि इतने जोर की जल रही है, ये रोग साधक चलो जैसे कल आप जी से अर्ज की थी बचपन से ही शुरू हो जाता है। मानो यदि इस जन्म में इसे खत्म नहीं किया जाता तो ये अगले जन्म में भी आपके साथ ही जाएगा। बच्चा अभी जो पैदा हुआ है अभी उसने क्या बेचारे ने कर्म कर लिए हैं, लेकिन उसके अंदर ईर्ष्या और क्रोध शुरू से ही शुरू होता है। कल आपसे अर्ज की थी दूसरा बच्चा पहले साल दो साल के बाद दूसरा बच्चा पैदा हो जाया करता था, अब शायद देरी होती है। दूसरा बच्चा पैदा होते ही बच्चा बड़े वाला ईर्ष्यालु हो जाता है और क्या चिन्ह प्रकट करता है, अंगूठा चूसने लग जाता है। ये सब ईर्ष्या की अभिव्यक्तियां हैं। बिस्तर गीला करना शुरू कर देता है, इससे पहले उसे ये आदत नहीं थी, बिस्तर पर पेशाब करने की आदत उसे नहीं थी, लेकिन ये दूसरा बच्चा आते ही उसके अंदर जलन जो पैदा हो रही है वह कई ढंगों से अभिव्यक्त हो रही है। छोटी छोटी बात पर वह रूठने लग जाता है, छोटी छोटी बात पर वह शरारत करता है, दांत पीसता है, काटता है, जिद करेगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, सब कुछ खाता था, सब कुछ पीता था, लेकिन अचानक ये क्या हो गया है, ये ईर्ष्या की अभिव्यक्तियां हैं। स्कूल में जाके भी औरों को लड़ाना शुरू कर देता है ताकि उसकी शिकायत घर जाए, यहां भी शिकायत करे, टीचर्स बैठे होंगे, उन्होंने ऐसे बच्चे जरूर देखे होंगे स्कूलों में जो इस प्रकार का बिहेवियर, इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये सब ईर्ष्या की अभिव्यक्तियां हैं, ईर्ष्या के चिन्ह है। वह बच्चा जिसकी सारी की सारी अटेंशन माता पिता और सारे परिवार की उस पर थी आज बिखर गई है, ये बच्चा सहन नहीं कर पाता, यही ईर्ष्या है। बहन बहन के प्रति ईर्ष्यालु, देवर भाभी की, ननद भाभी की, देवरानी जेठानी की ईर्ष्या, भाई भाई की ईर्ष्या, आजकल सब बहुत प्रसिद्ध ईर्ष्या है। महिलाएं देवियों बहुत भावुक होती हैं, इसलिए अधिक ईर्ष्यालु भी होती हैं। ऐसा अर्थ मत समझिएगा कि इनके अंदर हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं है, बहुत है, लेकिन आपके अंदर क्योंकि भावुकता अधिक है इसलिए ईर्ष्या भी बहुत है। कल आपसे अर्ज की जा रही थी देखो ईर्ष्या किस किस प्रकार से काम करती है। आप ये तो मानते हो, कल भी आप जी से अर्ज की थी, जिसके प्रति आपकी ईर्ष्या है आप मानो न मानो, जानो न जानो, स्पष्ट है वह आपसे आगे है तभी आपके अंदर उसके प्रति ईर्ष्या है, नहीं तो कोई ईर्ष्या का कोई अर्थ नहीं। ईर्ष्या हमेशा जो अपने से बड़े होते हैं, आगे होते हैं, उच्च होते हैं, उन्हीं के प्रति हुआ करती है। तो वह व्यक्ति जिसके प्रति आप ईर्ष्यालु हैं वह आपसे आगे है, आप इस बात को जो कुछ मर्जी कहो। मन ही मन बिटिया आपका भी मन करता है जहां वह पहुंचा हुआ है, जहां वह पहुंची हुई है मैं भी पहुंचूं, बहुत अच्छी बात है, यहां तक बहुत सुंदर बात है। जब नहीं पहुंच पाते तो निराशा होती है, तो वह निराशा किस प्रकार से प्रकट होती है, वह इस जलन के माध्यम से प्रकट होती है। आपकी इनबिलिटी टू डू सो, आपकी अयोग्यता वहां पहुंचने तक, उस जगह तक जहां तक वह पहुंचा हुआ है या पहुंची हुई है, आपकी अयोग्यता ईर्ष्या के माध्यम से, जलन के माध्यम से प्रकट होती है। आप क्या करते हैं, उस व्यक्ति में बेशक कोई दोष नहीं है लेकिन आप ढूंढ लेते हैं, ढूंढ के फिर आपका यह भी मन करता है जो दोष मैंने ढूंढे हैं और भी इन दोषों का समर्थन करें ताकि उसको नीचा दिखाया जा सके। जिस ऊंचाई पर वो है उसे नीचा गिराया सके, ये ईर्ष्या के काम है। होना तो यूं चाहिए देवियों, जहां वह पहुंचा है पहुंची है वहां मैं भी पहुंचू, लेकिन ये हो नहीं पाता, कठिन काम है। दूसरा काम आसान है, गंदा है, मलिन है, मन को गंदा करने वाला है, आपको पतनोन्मुख करने वाला है, पतन की ओर ले जाने वाला है, आदमी उस काम में पड़ जाता है, उसी को ईर्ष्या कहा जाता है। दूसरे को दुख देने में, दूसरे को दुखी देखने में बहुत सुख महसूस होता हो तो समझ लेना कि ईर्ष्या काम कर रही है, यही आप चाहते हो। एक वृद्धा की बात चल रही थी, कुबड़ी है बेचारी, ऐसे करके तो चलती है, हाथ में एक डंडा सा रखती है, उसे पकड़ पकड़ के तो वह चलती है। लोग उपहास करते मजाक करते हैं, वृद्धा बूढ़ी कुबड़ी ऐसे नामों से उसे पुकारा जाता है। बेचारी कुछ कह नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, भीतर ही भीतर कुड़ती रहती है। हो सकता है बच्चे छोटे हों तो उनको स्टिक दिखाती भी हो, लेकिन भीतर ही भीतर बेचारी कुड़ती रहती है। मन ही मन उनका अनिष्ट भी सोचती है, बड़े गंदे चिन्ह देवियों, ये सच्ची बातें हैं, मेरे पर हंसने वालों तुम भी ऐसे हो जाओ, ये आशीर्वाद तो नहीं है। इस वक्त आशीर्वाद देने की आयु है, आशीर्वाद देने चाहिए। आपकी वृद्ध अवस्था की महानता बड़प्पन इसी में है कि आप बड़े बन के रहो। ये छोटों का काम है दूसरों का अनिष्ट सोचना, और बड़ों का काम है हर एक का कल्याण हित सोचना। एज हैज गॉट नथिंग टू डू, जो भी ये काम करता है वह बड़ा है, और जो भी वो काम करता है वह छोटा है। ये वृद्धा बिचारी इसी तरह की है। संयोग की बात है, देवियों सज्जनों, आज इस वृद्धा को देवऋषि नारद मिले हैं, दयालु कृपालु संत ठहरे। लगा बिचारी तकलीफ में है, मेरे हाथ में समर्थ है, मैं इसका सब कुछ ठीक कर सकता हूं। अतएव कहा, माते तू चाहे तो मैं तुझे स्वस्थ कर सकता, एक बार तू हां कर तो ये तेरा कुबड़ ठीक हो जाएगा, वृद्ध अवस्था तुझे दुखदायी नहीं लगेगी, आसानी से शेष जीवन व्यतीत हो जाएगा। वृद्धा कहती है, अहोभाग्य महाराज, आप जैसे संत महात्मा के ऋषि के दर्शन हुए। बदकिस्मती है, संत के दर्शन से भी हर कोई लाभ नहीं ले पाता। सूर्य के प्रकाश से बाह्य अंधकार, ज्ञान के प्रकाश से भीतरी अंधकार दूर होते हैं। जितने अपराध इस प्रकाश में होते हैं उतने शायद अंधकार में नहीं होते, तो ये सूर्य का दुरुपयोग है, उसके प्रकाश का दुरुपयोग है, ज्ञान का दुरुपयोग है। आज देवेश्वरी नारद जैसे संत के देवियों दर्शन हुए हैं। वृद्धा कहती है, यदि आप सचमुच मेरे ऊपर दयालु हैं तो महाराज एक कृपा कीजिएगा, जितने भी मेरे ऊपर उपहास करने वाले हैं उन सबको कुबड़े कर दीजिएगा। देवऋषि नारद, परमात्मा करे हम में से कोई भी ऐसा कभी ना हो, देवऋषि नारद हक्के बक्के हैं। क्या मांगा है इसने, मैं क्या दे सकता था इसे, इसे जीवन भर का सुख दे सकता था, लेकिन अपने स्वास्थ्य का सुख न मांग के तो इसने दूसरों को दुख दे के सुख पाने की मांग मेरे सामने रखी है। बहुत खिन्न है देवऋषि नारद। स्वस्थ हो जाती, सुखी जीवन व्यतीत करती, लेकिन उसे इस सुख की परवाह नहीं है, इस सुख की इच्छा नहीं है। उसे शायद इससे अधिक सुख मिलता है दूसरों को दुख देके, दूसरों को दुख पहुंचा के। कल आपसे अर्ज की थी ना, अपने दुख तो दुख हैं ही, अपने कर्मों के अनुसार। एक दुख इस कारण भी है कि अमुक व्यक्ति सुखी क्यों है, उसके सुख को देखकर भी व्यक्ति दुखी होता है, ये ईर्ष्या का चिन्ह है। ईर्ष्या अभिव्यक्त हो रही है। कुबड़ी की कथा यहीं समाप्त करते हैं। वाक्य ही वह कुबड़ी निकली। जिसने संत की कदर नहीं की, समय तो हो गया है साधक, पर यह चर्चा इतनी सुंदर है, हर एक को जितना भी हो सके इसे अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करनी चाहिए। कल आप जी से अर्ज की थी, बहुत से शारीरिक मानसिक रोग ईर्ष्या के कर, क्यों इस ईर्ष्या से बहुत से और दुर्गुण भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं दुर्गुणों से ग्रस्त होके तो आदमी शारीरिक रोगों से ग्रस्त होता है एवं मानसिक रोगों से ग्रस्त होता है। आजकल एक रोग चला हुआ है जिसे डिप्रेशन कहते हैं, ढूंढ के देखिएगा उस डिप्रेशन का कारण इन्हीं रोगों में से कोई है। आज 34-35 वर्ष की यहीं की घटना है देवियों, 34-35 वर्ष की महिला, वृद्ध तो नहीं है लेकिन वृद्ध दिखाई दे रही है, पीला फेस, कई महीनों से कई वर्षों से अनिद्रा का रोग, स्लीपलेसनेस, डिप्रेशन, तनाव भरा जीवन, दिन भर भी थकान, रात को भी थकान, सुबह उठते ही थकान, इरिटेबल जीवन, नर्वस वीकनेस, इस सारे के सारे चिन्ह लेके अनेक वर्षों से एक महिला जगह जगह डॉक्टरों के पास जाती है। कल कर लेंगे साधक चर्चा आगे, आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।